समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्नों में आज क्या कुछ दबा हुआ है उसको खोजने के लिए और आपसे बांटने के लिए आज सायरा मुश्तबा के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार सायरा।
नमस्कार नवीन, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश मंडे एपिसोड ऑफ आज सवेरे। सो मंडे इज अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन, इजंट इट नवीन? हम और आप भी जोश और खरोश से भरपूर होते हैं, आई एम श्योर ऑल आवर लिसनर्स आर आल्सो प्रेपिंग अप फॉर द डे।
कुछ लोगों को सोमवार का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत होगी, नए जोश के साथ सप्ताह का स्वागत करेंगे, और कुछ लोग थोड़े से मायूस से हो जाते हैं, लो फिर सोमवार आ गया।
Yes, the Monday blues, as we say.
हम आपके इस मंडे ब्लूज को बिल्कुल भी ब्लूज नहीं रहने देंगे, आपको आज ऐसा तैयार करके भेजेंगे कि आप भी कहेंगे अरे आज का दिन कुछ खास है। और सारा जब इतिहास के पन्नों में हम जब झांकेंगे ना, तो आज बात करेंगे उस महान शास्त्रीय संगीतज्ञ विदुषी को जिनका नाम हम बाद में बताएंगे, लेकिन उनकी आवाज में कुछ अंश सुनते फिर आप देखिएगा कि वो क्या कहती हैं संगीत के बारे में।
चांदनी चौक में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर, उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में मेरा जन्म एक सभ्रांत कुल में कायस्थ माथुर फैमिली में हुआ। हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेजों का राज था, दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ।
आज जन्म हुआ है, बताई चलते हैं विदुषी शरण रानी का, जिनके बारे में आज हम आपको और डिटेल से बात करेंगे। और अब उस एक महान गायक का, महान संगीतज्ञ का भी आपको हिंट देते हुए चलते हैं जो अपनी आवाज में कुछ यूं कहते हैं।
मुझे रघुबर की धुन आई, मुझे रघुबर की धुन आई, आगे आगे राम चलत लक्ष्मण भाई भाई, जीने के पीछे चलत जानकी विपत सही।
और अभी आधे घंटे के प्रोग्राम में आप सोचिएगा कि ये दो महान विभूतियां कौन सी थी, आज क्यों हम इन्हें याद कर रहे हैं।
सो वेल नवीन, आई थिंक वी हैव गिवन इनफ हिंट्स टू आवर लिसनर्स, आई एम श्योर दे वुड बी नाउ स्पेक्युलेटिंग कि कौन सी शख्सियत का हम लोग जिक्र करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस नवीन, विदाउट मच अडू। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi will visit Chandrapur in Maharashtra this evening in support of BJP candidates running for the Lok Sabha seats in Chandrapur and Gadchiroli. The public meeting at Morwa Airport ground will be attended by senior BJP leaders of the state and leaders of the Mahayuti Alliance in Maharashtra. Sudhir Mungantiwar, the state forest minister, is the candidate for the Chandrapur Lok Sabha constituency, and the sitting MP of Gadchiroli, Ashok Nete, is the candidate for the Gadchiroli Lok Sabha constituency. 5 constituencies in eastern Vidarbha region, including Nagpur, Ramtek, Khandarpur, Gadchiroli, Chimur and Bhandara Gondia, will go to polls on the 19th of this month.
पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के झूमर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव देश को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए हैं, ताकि केंद्र में एक सशक्त और स्थिर सरकार हो। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज भारत में निवेश में वृद्धि हो रही है और वैश्विक मामलों में देश का कद बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता के कारण भारत आज आतंक से मुक्त है।
इन छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी फोर्सेज हैव रिकवर्ड अ ह्यूज कैश ऑफ एक्सप्लोजिव्स हिडन बाय नक्सलाइट्स फ्रॉम 2 प्लेसेज इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। द रिकवरी वॉज मेड बिटवीन टोंडमार्का एंड डब्बामार्का विलेजेस अंडर किस्तराम पुलिस स्टेशन लिमिट्स by a joint team of the CRPF and its elite Cobra Battalion and Bastar Battalion. The seized materials include 350 gelatin sticks, 105 electric detonators, a barrel grenade launcher, 22 BGL projectors, 19 BGL bombs, several BGL rounds, an IED weighing 5 kgs, 30 kgs of gunpowder, and some Maoist literature.
सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एक दिन के सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, पहलों और सुधारों पर जोर देना है ताकि तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर किया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा प्रमुख अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे। ये सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों, सैन्य कार्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालयों का पहला संयुक्त सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में सेनाओं के विभिन्न स्तर के अधिकारी अपने सुझाव, अपने अनुभव साझा करेंगे और एकीकृत व्यवस्था को कार्यरूप देने संबंधी सुझाव भी देंगे।
For the upcoming Lok Sabha elections, there will be polling stations controlled by differently abled workers in every constituency. The Central Election Commission has emphasized that there should be polling stations for the differently abled in every constituency, and disabled controlled polling stations will be set up to meet the requirement. The facility of home voting will be available to those voters whose disability rate is more than 40% through postal ballot.
रूस में बन रहे दो भारतीय नौसेना युद्धपोतों के इस साल के अंत तक सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। पहला युद्धपोत आईएनएस तुशील के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरा युद्धपोत आईएनएस तमाल होगा। और अब बात खेलों की दुनिया की।
Let's start with tennis, when Sumit Nagar became the first Indian to enter the Monte Carlo Masters singles main draw in 42 years, beating FDR's Acosta of Argentina in a three-setter in the finals qualifying round in Monte Carlo yesterday. Nagar, ranked 95th in the world, defeated his world number 55 rival in a grueling match.
वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी आपकी और हमारी। और अब प्रमुख शहरों से जुड़ी खबरें, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद सारा से, और फिर मैं आपको ले चलूंगा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता।
Yes, as Naveen said, let's start with Shehri Chennai. The Arab War IACUM, an anti-corruption NGO, has launched a mobile application to help people know more about the contestants in the Lok Sabha elections. The information collated from affidavits such as details on education, occupation, annual income, assets, liabilities and criminal cases is available on the application. The complete details of the total number of candidates in the fray in Tamil Nadu and Puducherry is also available. More than 100 volunteers across the state and Puducherry have entered the relevant data from submitted affidavits. Quite a very innovative app where every person can probably check the profiles of the candidates. Moving on, another good news coming in from Chennai. A three-month program called My Gut, My Health is being introduced by Med India Hospitals in Chennai, an affiliated institution of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, in the wake of World Health Day. This initiative, called the Gut Evaluation Scoring System Program, was introduced to the public for free-of-cost evaluation of their gut health. It is a numerically linked symptom-based assessment launched to guide the public to assess the severity of digestive health symptoms they are suffering from and also to suggest treatment options. The public can register for the program between 8th of April and 30th of June. Very innovative, isn't it? Because the gut health is so important. Naveen kehte nahi hai ki aapki puri sharir ki health jo hai is dependent on your gut health. Moving on to Bengaluru. The Bangalore Medical College and Research Institute Hostel Warden Dr. Akhilandeshwari has been suspended after two of the students were tested positive for cholera. All the 47 students staying in the hostel were hospitalized after they complained of diarrhea and dehydration. The institute has informed that the cook will be replaced and the kitchen will be disinfected. The pest control measures were initiated in the hostel and food and water were supplied from the Victoria Hospital. The Health and Family Welfare Department in the state issued advisory on the precautions to be taken to prevent the spread of cholera in the city. The Brihat Bengaluru Mahanagarpalike and Bengaluru Water Supply and Sanitation Board have worked out standard operating procedures to ensure there is no cholera outbreak in the rest of the city. So all the denizens of Bengaluru should be very careful. Moving on to Hyderabad in Telangana, in view of the prevailing hot weather conditions in 5 days, the state public health department advised immediate medical attention to the general public. An advisory for protection against the heat wave issued by the Director of Public Health and Family Welfare, Dr. B. Ravindra Nayak, said people feeling anxiety, dizziness, faintness and lightheadedness, and those experiencing altered mental sensorium with disorientation like confusion and agitation, irritability, ataxia, seizure, should also seek immediate medical attention. He also said that hot, red and dry skin or muscle weakness or cramps, nausea and vomiting, rapid heartbeat and rapid and shallow breathing as danger signs calls for medical attention as well. He also cautioned infants, young children, pregnant women, people working outdoors and those with health issues are at greater risk than others and need additional attention.
हालांकि सायरा ये जो लू की चेतावनियां न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए ही है अगर कह सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में अगर मौसम विभाग की माने तो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और अगर आप हीट वेव्स का शिकार होते हैं आपको लू लगती है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए डॉक्टर से इलाज कीजिए और अगर आपको इससे बचना है तो पानी लगातार पीते रहिए
दैट्स द की प्रिवेंटिव मेजर नवीन दैट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड दैट्स द की टू प्रॉब्ली गार्ड यू अगेंस्ट
तो बाकी अपने आप को हाइड्रेट रखिए एक छोटी सी बॉटल अपने पास रखिए और उसमें पानी हमेशा रखिए क्योंकि जल है तो जीवन है बहरहाल अब नजर डालते हैं दिल्ली की खबरों पर तो सबसे पहले बात दिल्ली मेट्रो की दिल्ली मेट्रो जो कि दिल्ली के यातायात की अब जान बन चुकी है और सारा शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि मेट्रो अगर ना होती या मेट्रो होती तो क्या होता है ना
ऐसा
लगता है कि दिल्ली में जितने लोग ऊपर धरती के ऊपर चल रहे हैं चाहे उतने धरती के नीचे भी चल रहे हैं
ज्यादा
फुटफॉल की बात करें तो इतना फुटफॉल है कई स्टेशन पे और एक बहुत अच्छी बात है सारा कभी कभी लगती है कि कई बार जब इंटरचेंज करना पड़ता है ना मेट्रो में तो आपकी इतनी अच्छी वॉक हो जाती है कि अगर आपने दिन भर वॉक नहीं करी है ना तो एक बार मेट्रो को चेंज कर लीजिए एक से दूसरी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा आपकी सेहत के लिए दिल्ली मेट्रो आज से 5 मई तक एक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करेगी इसका आयोजन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी सेंटर लंदन के सहयोग से किया जा रहा है और इस सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यात्री सेवा की गुणवत्ता में सुधार के बारे में लोगों की राय जानना दिल्ली मेट्रो के अनुसार इस सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट dailymetrorail.com पर जाकर आप अपने सुझाव जो है वो दर्ज करा सकते हैं यात्रियों के लिए सर्वेक्षण फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगी दिल्ली यातायात पुलिस ने कल बताया कि दिल्ली में नशे में गाड़ी चलाने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष के पहले 3 महीने में ही 6591 उल्लंघनकर्ताओं पर मामले दर्ज किए हैं यातायात पुलिस ने इस संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की है और दिल्ली पुलिस ने और यातायात पुलिस ने आने वाले दिनों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास करेगी इसके अलावा यातायात नियमों में और सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता में लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 रहा था अब बात मुंबई की जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर ने बताया है कि मुंबई उपनगरीय जिले में औद्योगिक समूहों निगमों कंपनियों और संस्थानों औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी या रियायत न देने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मुंबई उपनगरीय जिले में शामिल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होगा सभी कर्मचारी जो मुंबई उपनगरीय जिला क्षेत्राधिकार में मतदाता हैं लेकिन काम के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त छुट्टी या 2 घंटे की छूट देने का निर्देश दिया गया है जो भी प्रतिष्ठान पूरा दिन छुट्टी देने में सक्षम नहीं है वो मतदाताओं को 2 घंटे की छूट दे सकता है लेकिन इसके लिए कलेक्टर या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा कोलकाता का रुख करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल में भूपति नगर विस्फोट के सिलसिले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि गिरफ्तारी के लिए नियमानुसार ही कार्रवाई की गई है। एनआईए ने यह भी कहा कि दिसंबर 2022 में बम बनाने से जुड़ी इस घटना में नारूविला गांव में तीन लोगों की मौत हुई थी। एनआईए ने यह भी बताया कि कल नारूविला गांव में तलाशी के दौरान उपद्रवी भीड़ ने टीम पर अकारण हमला कर सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की। तो ये थे आपके शहरों की कुछ खबरें। और अब हाले मौसम, ताकि आपको पता चल सके कि आज आपको दिन भर कितना पानी साथ लेके चलना है। बारिश हो रही है तो छतरी लेके चलनी है, और अगर गर्मी हो रही है तो क्या इंतजाम करना है। बहरहाल दिल्ली की बात करें तो आसमान एकदम साफ रहेगा और जो तापमान है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम भी 17 डिग्री के आसपास नोट किया गया है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री। बात करें कोलकाता की तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
And Naveen, if we talk about Chennai, it will have a partly cloudy sky today. Temperature will hover between 28 and 34 degrees Celsius, while Bengaluru is going to be mostly sunny today. So we request all the listeners in Bengaluru to probably stay hydrated, carry your water bottles, a khoob pani pijiye, aam pana pijiye, isn't it? It's a very desi ilaj to prevent loo, you can say.
Baki agar aam panna pee sakte hain to zarur pijiye, wo aapka taste bhi enhance karega aur aapko hydrate bhi rakhega.
Yes. So in Bengaluru the temperature would be between 21 and 36 degrees Celsius, while in Hyderabad the sky would be partly cloudy. Temperature would hover between 23 and 39 degrees Celsius.
और अब बातें आज के इतिहास की, जिसका आपको सब बेसब्री से इंतजार रहता है प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही कि आज क्या कुछ खास है। 1857 वो आज ही का दिन था जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी।
Yes, on this day in 1455, Alfonso de Borgia was elected as the Pope Callistus III. In 1759, British troops chased the French out of Masulipatnam in India. Also in 1820, the famous ancient Greek statue of Venus de Milo was discovered on the Asian island of Milos. Art historians have two strong theories. One of the strongest and most popular speculation is that she's supposed to be Venus, the goddess of love. However, she may also represent the goddess of the sea, who held special significance on the Greek island of Melos, where the work of art was found.
1929 वो आज ही का दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था। 2000 की बात करें तो गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का 13वां सम्मेलन आज ही के दिन कोलंबिया के कॉटेजिना शहर में आरंभ हुआ था, और 2002 आज ही का दिन जब अमरीकी अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
On this day in 1997, Microsoft released the Internet Explorer for beta. तो वो कुछ दिन याद आते हैं जब नया नया इंटरनेट आया था, if you remember Internet Explorer. But now is the age of Google Chrome, we can say. तो अभी भी Internet Explorer, I think so, जो बहुत heavy files होती हैं, खासतौर से when people are uploading for exams and all, they prefer this, you can say, search engine, isn't it?
टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है, और सायरा ये वो जनरेशन है, या यूं कहें कि जो कुछ नब्बे से अब तक की जो जनरेशन है ना, उसने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है।
यस, बिकॉज बहुत सी चीजें शुरू हुई, फिर उन पे जो है इम्प्रोवाइजेशंस हुए, सो वी हैव सीन अ लॉट।
और फोन की बात करें तो मुझे ध्यान है कि साहित्यकार अक्सर अपनी कहानियों में एक चोगे का जिक्र करते थे।
yes.
उस चोगे को हम उस लैंडलाइन फोन कहा करते थे, जिसके साथ एक लंबी सी तार होती थी और जिसको शायद सुलझाना बहुत मुश्किल होता था।
राइट, एंड देन केम द कॉर्डलेस। हम लोग कितना इतराते थे हमारे घर में जब कॉर्डलेस था, मतलब पूरे घर में लेके घूम के बात करते थे। नाउ एवरीवन हैज mobile phone. Well, in 1963 on this day, Anne Bancroft and Gregory Peck won the Oscars for Lawrence of Arabia at the 35th Academy Awards. The story of T.E. Lawrence, the English officer who successfully united and led the diverse, often warring Arab tribes during World War I in order to fight the Turks.
और अब बात उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से।
And as you had mentioned that today Mangal Pandey is remembered, well, a revolutionary who actually was, jinhone keh sakte hain beach boy, because he started the first war of independence through an act of rebellion where he refused to bite on the cartridges of the rifles that were supposedly greased with the fats of pigs. So, zahir si baat hai ke ye cheez objectionable thi for both Hindus and Muslims alike, and then they refused to obey the orders of the British commanders. So, we are remembering Mangal Pandey today.
Bharatiya Swatantrata Sangram ke agrani yodha Mangal Pandey. Mangal Pandey jinki aaj punyatithi aur unka naam Bharatiya Swatantrata Sangram mein agrani yodhaon ke roop mein liya jata hai, jinke dwara bhadkai gayi kranti ki jwala se अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो बुरी तरह से हिल गया था और अंग्रेजों ने भारत में निष्कंटक राज्य करने के जो सपने देखे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1857 का जो साल होगा वो उनपे तुषाराघात की तरह सिद्ध होगा। और एक नारा जो मंगल पांडे ने दिया था, मारो फिरंगी को, ये प्रसिद्ध नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबा से सन 1857 में ही निकला था।
Today we are also remembering Jaddan Bai on her death anniversary, and her real name was Jaddan Bai Hussain, but we all know her as Jaddan Bai. She was one of the pioneers of Indian cinema. She, along with Bibbo and Saraswati Devi, were one of the first female music composers in Indian cinema. And of course, not just a singer and a music composer, but also a dancer, actress and filmmaker. And we all know that she is the mother of the famous actress Nargis as well.
आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और प्रसिद्ध सरोद वादक विदुषी शरण रानी की पुण्यतिथि है। वो पहली महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाइयां प्रदान की थी, और इसी कारण उनके प्रशंसक उन्हें सरोद रानी के नाम से पुकारते थे। शरण रानी का देहांत उनके 80वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही हो गया था। शरण रानी 20वीं सदी की म्यूजिक लीजेंड मानी जाती थी, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजी जा चुकी थी। शरण रानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहकर सम्मानित किया था। आकाशवाणी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से कही।
हमारे भाई को बड़ा शौक था, राजेंद्र नारायण जो थे वो नई नई चीजें खरीद के लाते, पैसा भी बहुत था उन पर, घर में सजा देते। तो एक जगह से उन्होंने कभी नहीं देखा था एक बाजा, उन्हें पता भी नहीं था क्या था, वो खरीद लाए, वो था सरोज। उस दिन मेरी सामने निगाह गई उस पर, 8 साल की थी मैं, 8-9 साल की। तो मैंने कहा ये देख सकते क्या बजा, उसका नाम ही नहीं पता, पर धूल ही धूल जम रही थी। उसको झाड़ा और पहुंचा और गाना सीखा था तो सुर ज्ञान तो था ही, तो उसके जो तार थे ढीले पीले पड़े हुए, उसको मैंने जो कसना शुरू करा वो अपने आप अपने स्थान पर आ गए, सा मा सा पा, क्योंकि उससे ऊंचा तो जाए तो अजीब लगे, क्योंकि ज्ञान तो था उसका म्यूजिक का। अब ये नहीं पता बजता कैसे, कहाँ से कैसे बजाएं क्या करें। तो पलंग पर बैठी हुई थी, पलंग पर बैठ के मैंने वो, तो उस जमाने में पैसा चलता था, मुझे नहीं मालूम था जवाब से बचता है या मिजाज से बचता है काय से बचता है, तो पैसा था तांबे का पैसा। तो उस पैसे से मैंने उसको जो टकोरा और जो उसमें से आवाज निकली वो मेरे दिल के अंदर चली।
मैंने कहा ये आवाज विदुषी शरण रानी की थी जिनकी आज पुण्यतिथि है। हालांकि कल 9 अप्रैल 1929 को उनका जन्म हुआ था दिल्ली के एक जाने माने कायस्थ परिवार में। सरोद पर जब उनकी चरगुलियां थिरकती थी तो आवाज कुछ ऐसी निकलती थी, और अब आप सुनेंगे राग हेमंत।
If I tell you that today is the birth anniversary of Shiv Putra Siddharamaiya Komkalimath, kya aap guess karenge wo kaun hai?
Shayad aap Kumar Gandharv ki baat kar rahi hain.
Absolutely, I'm sure that the listeners would have guessed as well, because hum logne shuruaat mein unki clip sunai thi. And well, a classical singer par excellence and known for his unique vocal style and for his refusal to be bound by the tradition of any gharana. The name Kumar Gandharv is a title that was given to him when he was a child prodigy. A Gandharv is a musical spirit in Hindu mythology.
Kumar Gandharv, aaj is bahan sangeetkar ki jayanti hai. कुमार गंधर्व का भारतीय संगीत की दुनिया में कद इतना विशाल है जिसे शायद ही कभी कोई छू पाए। बचपन से ही उनमें संगीत की चमत्कारिक प्रतिभा थी। संगीत की शिक्षा जरूर प्राप्त की थी लेकिन सांगीतिक दक्षता शिक्षण के बारे से बहुत अलग थी। शास्त्रीय संगीत की परंपराओं की समझ के साथ स्वतंत्र होकर उन्होंने अपने गायन को उस शीर्ष तक पहुंचा दिया सारा जहां एक ध्रुव तारा चमकता है। उनका संगीत, उनके राग हमेशा संगीत के नए साधकों को राह दिखलाते रहेंगे। बेहतरीन बंदिशें, तराने, जोड़, राग, धुन, उगम राग, भजन, लोक संगीत, ऋतु संगीत, न जाने क्या क्या उन्होंने गाया है और कुमार जी के अथाह रचना सागर में से चुनिंदा मोती हैं जिन्हें सुनकर आप दूसरी दुनिया में खो जाने को विश्वास हो जाएंगे। सुनते हैं उनके स्वर में एक बेहतरीन भक्ति रचना।
जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जैसे पार गिरे सरोवर के, जैसे पार गिरे सरोवर के, मिलना बहुत
40s, Kumar Gandharv was stricken with tuberculosis and was told by doctors that he would never sing again. And Naveen कहते नहीं है कि एक singer को अगर आप गाने से रोक दिए तो वो कितना बेचैन हो जाता है, isn't it? And there are many stories of Gandharv in this period that depict a man lying in bed and listening to the sounds of nature around him, sounds of birds, the wind, and passing street singers. And people also say that during this time he would hum to himself almost inaudibly. And there is a speculation that this was the beginning of Gandhar's radical new conception of the Nirguni Bhajan, which celebrates a formless, that is, Nirguna divinity. In fact, in 1952, after a lot of treatment and aftercare from his wife Bhanumati, he recovered and began singing again. However, his voice and singing style would always bear the scars of his illness because one of his lungs, Naveen, had been rendered useless. So he had to adapt to sing with a single lung.
लेकिन कुमार गंधर्व की विलक्षण प्रतिभा इसी भक्ति संगीत से झलकती है। आज 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान और महान कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुण्यतिथि है। 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की जिसे बाद में आनंदमठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। उन्हीं की रचना है वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को हुआ था। लेकिन सुनते हैं उनकी ये महान रचना।
We are remembering Amit Trivedi on his birthday. We all know that he has given some excellent music in some of the films. So, very happy birthday to Amit. We remember you with this song.
हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं।
आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अपने एडिटर ऐश्वर्या और प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपा के साथ मैं नवीन और सायरा आपको छोड़े जा रहे हैं।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। तब तक आप भी सवार लीजिए खुद को। नमस्कार।